कल बीके गीता दीदी बहन से तो आप मिल ही चुके हैं, उनका परिचय जान चुके हैं, तो आज हम बीके गीता दीदी के मुख कमल से महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे। तो इस सत्र का टॉपिक है कार्यक्रम का परिचय एवं उद्देश्य। जैसे हम सब भाई बहन ज्ञान सरोवर में आए हैं, तो हमारा क्या उद्देश्य है, तो इन चार दिनों में हम क्या उद्देश्य लेकर के आए हैं और क्या खजाना हम यहाँ से लेके जाएंगे। तो हम ईश्वरीय खजानों से भरपूर होकर के जाएंगे। तो बस गीता दीदी आपको कार्यक्रम का परिचय उद्देश्य के बारे में हमें बताएंगे। ओम शांति।
सभी ने आज का मॉर्निंग सेशन राजीव का पहला सत्र अटेंड किया, 6:30 बजे वाला। हाँ, सबने अटेंड किया है, बहुत अच्छा। नाश्ता किया सभी ने? हाँ, ठीक से मिला सब कुछ? हाँ, कितना किया, ज्यादा तो नहीं किया है ना? नींद तो नहीं आएगी ना? व्यापार और उद्योग के क्षेत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। देश की रीढ़ की हड्डी के समान, बैकबोन के समान इसको कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र देश में समृद्धि को खींच करके ले आता है। और आप जानते हैं कि जो देश आर्थिक रूप से जितना समृद्ध होता है, वो उतना ही हर क्षेत्र में, चाहे विज्ञान का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, वो हर क्षेत्र में विकास कर सकता है। इसलिए इस क्षेत्र से जुड़े हुए भाई बहने भी अपने आप में बहुत विशेष है। कुदरत ने हमें प्रकृति के 5 तत्व दिए हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। पर इन 5 तत्वों से आज यही उद्योग का क्षेत्र है जिसने हमें करोड़ों अरबों चीजें बना करके दी है। आज संसार में जितनी भी चीजें, वस्तुएं, साधन, वैभव पदार्थ हम देखते हैं, वो प्रकृति के 5 तत्व से बने हुए हैं, मैटर से बने हैं, इसलिए हम उसे मटेरियल कहते हैं। तो 5 तत्व से, एक छोटे स्क्रू से लेकर बड़े से बड़ी मशीन उद्योग क्षेत्र हमें बना करके देता है। और व्यापार का वो क्षेत्र है जो हमें अपने शहर में, गांव में, घर बैठे इन सभी चीजों को उपलब्ध कराते हैं। आज अगर आपको अपने शहर में बैठे हुए कश्मीर के एप्पल चाहिए या आसाम की चाय चाहिए, या सूरत की साड़ियां चाहिए तो हमें कौन ला करके देता है? यही आप व्यापारी भाई बहने हैं जो घर बैठे अपने गांव नगर में इन चीजों को उपलब्ध कराते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे दैनिक आवश्यकता की जो भी चीजें हैं, कभी आप नोट करिए, सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को सो जाते हैं तब तक हम कितनी चीजों का उपयोग करते, कितनी चीजों का उपयोग करते। एक टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, बाल्टी से लेकर आप गिनती करिए हम दिन भर में कितनी चीजों का उपयोग करते। ये दैनिक आवश्यकता की सारी चीजें व्यापार के कारण हमें घर बैठे प्राप्त होती हैं। सुख और सुविधा के साधन भी हमें प्राप्त होते हैं और देश के करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। ये क्षेत्र आय का बहुत बड़ा साधन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और आप सभी भी बहुत विशेष हैं। नौकरी करना एक सहज बात है पर बिजनेस करना एक बहुत हिम्मत और साहस की बात होती है। उसमें सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों में परखने की योग्यता होती है, उचित निर्णय लेने की क्षमता होती है, समय परिस्थिति को पहले से भांप लेना ये भी आप में योग्यता होती है और मिलनसार व्यवहार कुशलता भी आपकी विशेषता होती है। इसलिए भल देखने में थोड़े से भाई बहने पर मैं कहूंगी समाज का बहुमूल्य वर्ग आज यहां उपस्थित है और हम देखते हैं कि जब से हमारे देश ने व्यापार और उद्योग का ग्लोबलाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन की नीति जब से अपनाई है, हमारे देश के व्यापार और उद्योग क्षेत्र के सामने काफी चैलेंजेस उत्पन्न हुई है। जब दुनिया भर की चीजें हमारे मार्केट में उपलब्ध होने लगेगी तो अवश्य हमारी प्रोडक्ट में ऐसी यूनिकनेस चाहिए और हमारे आर्ट ऑफ बिजनेस में ऐसी स्पेशलिटी होनी चाहिए, तभी हम इस कंपटीशन में अपना स्थान बनाकर रख सकते हैं। और जब ऐसी कंपटीशन से हम गुजरते हैं तो स्वाभाविक है कि टेंशन क्रिएट होता है। इसलिए देखा जा रहा है कि व्यापार और उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए भाई बहने भी तनाव से ग्रसित होते जा रहे। इसलिए विद्यालय ने विद्यालय से कनेक्टेड लाखों व्यापारी भाई बहनों के अनुभव के आधार से ये विंग का निर्माण किया और उन सब भाई बहनों के अनुभव के आधार से ये पाया कि अगर हम अपने आप में स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन को ले आते हैं तो हम इस तनाव युक्त वातावरण के बीच में कितना भी बड़ा बिजनेस या इंडस्ट्री रन करें और कितने भी कर्मचारी कारीगर के साथ कार्य करना हो, पर हम बहुत शांति से, स्वस्थता से और बहुत संतुलित मनोस्थिति के साथ हम कर सकते हैं। इस एकेडमी का जब निर्माण किया गया तो यही बात ध्यान में रखी गई कि कोई भी प्रोफेशन स्पिरिचुअलिटी के बगैर अधूरा है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमारी इनर पर्सनालिटी को डेवलप करती है, हमारे में आंतरिक गुण और शक्तियों का विकास करती है, जिसके कारण व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में कार्य करेगा वो अपना अच्छा प्रदान कर सकता है। कहा जाता है कि आफ्टर ऑल हर मशीन के पीछे मानव होता है और व्यक्ति की जो भी लिमिटेशंस है, उनकी जो वीकनेसेस है या उनकी जो स्पेशलिटीज है, कैपेसिटी है, वो उनके कार्य क्षेत्र को जरूर प्रभावित करती है। इसलिए आवश्यक है कि भले हम अपने बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज रखें, उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन को भी अपडेट करते रहे, लेकिन साथ साथ अगर हम अपनी आंतरिक शक्तियों का भी विकास करें तो सफल होना हमें सहज लगे। आज आप देखते हैं कि एक व्यापारी लगभग अपनी आधी जिंदगी अपने हेल्थ को भी गंवाकर वेल्थ कमाने में खर्च कर देता है कि नहीं ऐसा? आज के जो भी आईटी प्रोफेशन से जुड़े हुए भाई बहने हैं वो बड़ा कितना घंटों तक कार्य करते हैं, अपनी हेल्थ के लिए भी नहीं सोचते। माना हम आधी जिंदगी वेल्थ के लिए हेल्थ गंवा कर वेल्थ कमाने में लगे रहते हैं और बाकी की आधी जिंदगी कमाई हुई वेल्थ, गंवाई हुई हेल्थ वापस लाने में खर्च करते। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को भी ठीक करने की आवश्यकता है। आज हमने चीजें अनेक बना दी हैं। आज से कुछ वर्षों पहले हमें याद है 93 में जब ये ज्ञान सरोवर बनना शुरू हुआ, लगभग 25 वर्ष पहले की भी बात करें, एक एम्बेसडर और फियाट कार के बारे में हम जानते थे। आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास से हम देखते हैं कि हर कंपनी हर आए दिन नए नए मॉडल पब्लिश करती तैयार करती है। पहले एक लक्स लाइफ बॉय साबुन हम यूज करते थे, आज अनेक प्रकार के साबुन तेल क्रीम पाउडर चीजें बन गई। चीजों की क्वालिटी हम अच्छी बनाते जा रहे हैं। कोई भी चीज खरीदते हैं व्यक्ति सबसे पहले क्या पूछता है, हाँ कि भाई अच्छी क्वालिटी की है ना। तो चीजों के लिए क्वालिटी का ख्याल हम करते हैं, लेकिन हमारे जीवन की क्वालिटी जो है वो दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है, गिरती जा रही है। घर साधन और सुविधाओं से तो भर गया, लेकिन इंसान भीतर से खाली हो गया। हमारी आंतरिक गुण और शक्तियों में कमी आ गई। आप देखिए कम्युनिकेशन के इतने साधन आज बन गए हैं कि हम दुनिया के कोने में बैठकर देश विदेश में रहने वाले लोगों से हम संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन क्या कारण है कि एक ही घर में एक ही कमरे में रहने वाले हम आपस में बात नहीं करते। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती जा रही है, लेकिन जो एनालिसिस करने का पावर है कि उसमें राइट क्या है रॉन्ग क्या है, कौन सी यूजफुल इंफॉर्मेशन है कौन सी रॉन्ग है, ये जो एनालिसिस की पावर है, परखने की जो योग्यता है वो आज नहीं रही। इसलिए कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस आज हो गया। वो विवेक नष्ट हो गया है जो हम परख सके कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं कि हमने अपना बिजनेस सेट कर दिया, फैमिली को सेट कर दिया है, हमारे घर में भी टीवी सेट डाइनिंग सेट सब कुछ सेट है, पर इंसान खुद अपसेट, हम खुद अपसेट। हमारे अंदर जो शांति और शीतलता होनी चाहिए, जीवन में जो संतुष्टता और प्रसन्नता की जो अनुभूति होनी चाहिए, उससे हम कोसों दूर हो गए। हम अपने आप से पूछे, क्या हम अपने आप से संतुष्ट हैं? जीवन की वर्तमान स्थिति और अपने भाग्य से हम संतुष्ट हैं? हम अपने परिवार से संतुष्ट हैं? जो व्यापार और उद्योग हम कर रहे हैं क्या हम उनसे संतुष्ट हैं? हम इस देश से संतुष्ट हैं? जब आंतरिक संतुष्टता नहीं है तो स्वाभाविक है कि जीवन में प्रसन्नता कहां से हो। वो आंतरिक खुशी प्रसन्नता संतुष्टता हमने गंवा दी है, इसलिए लाफ्टर शो देखने पड़ते हैं, लाफिंग क्लब्स में जाना पड़ता है, पर वो अननेचुरल कहां तक रह सकता है। एक समय था मीरा को ईश्वर की याद में अपने अंतर मन में इतनी खुशी आनंद था कि उस आनंद में उनके पांव ना छूटते थे, वो डांस करती थी। आज हम हैं डांस कर करके अपने में खुशी लाना चाहते। उनके अपने अंदर खुशी थी इसलिए अंग ना छूटते थे, और आज रिवर्स हो गया है कि हम डांस कर करके अपने में खुशी लाने का प्रयास करते। तो कमी कहां आ गई? चीजें बढ़ रही है, सिस्टम रिफाइन हो रहे, साधन शक्तिशाली कॉम्पैक्ट बन रहे हैं, लेकिन हमारे आंतरिक गुण और शक्तियों में कमी आ रही है। आप खुद महसूस करते होंगे, चाहे परिवार में चाहे कार्य क्षेत्र में, आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं सकती है और एक दो को यथार्थ न समझने के कारण आज कितने प्रॉब्लम्स होते। एक कवि ने कहा है कि जीवन क्या है, बेसमझी और गैर समझी से ही भरा हुआ। हम एक दो को यथार्थ समझ नहीं पाते या उल्टा समझ लेते, हम एक दो को सहन नहीं कर पाते, और न सहन करने के कारण बहुत जल्दी हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करते। वैसे हम कहते हैं कि हैं हम इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर, हमें एक्ट करना, पर मोस्टली हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, रिएक्ट ही करते रहते। उसने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूं, इसने दो बोला, मैं चार बोलू, हम रिएक्ट करते रहे। क्योंकि वैरायटी पर्सनालिटीज को टॉलरेट कर नहीं पाते। आप खुद ऑब्जर्व करते होंगे कि हमारे माता पिता में जितनी सहनशीलता थी, क्या उतनी हमारे में है? और जितनी हमारे में है उतनी हमारे बच्चों में है? है नहीं? हम एक दो को माफ नहीं कर पाते, एक दो की गलतियों को, भूलों को, पापों को माफ नहीं कर पाते, और मन में वो गांठ बनी हुई रहती। इसलिए बरसों पहले बनी हुई बातें आज भी मन में गांठ बनकर खटकती रहती है, डिस्टर्ब करती रहती। वैसे कहो भगवान को याद करो तो कहेंगे कि भूल जाते, याद नहीं रहती। और ये बरसों पहले की बातें याद हैं कि 10 साल पहले सबके बीच में उसने मुझे ऐसा ऐसा कहा, वो बातें याद हैं। और कहते हैं ना, जब मन में गांठें बनती हैं, ब्लॉकेजेस बनते हैं, तो ऑटोमेटिक वो हमारे हार्ट की आर्टरीज में भी ब्लॉकेजेस बनने लगते हैं। कोई भी बात हुई, लेट गो नहीं कर पाते। हम एक दो के लिए त्याग, सेवा की भावना हमारी खत्म होती जा रही। आज हर एक इंसान सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है कि भाई हूं केयर, हमें क्या पड़ी है। हर कोई अपना ही स्वार्थ सोचता रहे। और जब ये आंतरिक गुण और शक्तियां कम हो जाती, उसी का रिजल्ट है कि आज तनाव बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब इसलिए बढ़ रहा है। अगर मैं पूछूं कारण, तो अक्सर हम दूसरों को दोषित करते हैं कि फलाने के कारण मुझे टेंशन, परिस्थितियों को दोषित करते हैं कि बात ऐसी हुई, तनाव हो गए। लेकिन सत्यता ये है कि परिस्थितियां तनाव का कारण नहीं, लेकिन हमारा जो मेंटल एटीट्यूड है उस परिस्थिति के प्रति, उसके आधार पर टेंशन क्रिएट होता है। रिपीटेडली जब वो बातें हम याद करते रहते हैं तो वो टेंशन क्रिएट करते। इनर पावर कम हो जाने के कारण, रेजिलियंस कम हो जाने के कारण, परिस्थितियों का प्रेशर तनाव उत्पन्न करता है। तो विद्यालय ने इस बात को ध्यान में रखा कि अगर हम अपने इनर वर्ल्ड को, हम अपने आंतरिक आत्मस्वरूप को अगर एनरिच करें, डिसिप्लिन करें, तो जीवन की बाह्य परिस्थितियों को हम आसानी से फेस कर सकते हैं। जैसे फिजिकली अगर हम वीक हैं, तो हमें वातावरण का प्रभाव पड़ता है ना? हवामान की असर हो जाएगी। अब आप सब यहाँ आए हैं, पर आप में से कई होंगे जिनको, कईयों को जुकाम हो गया, किसी को कुछ हो गया, हरेक को नहीं हुआ। क्योंकि जिसके पास फिजिकली वो रेजिस्टेंस पावर है, उनको इफेक्ट नहीं हुआ। पर जो इस हिसाब से वीक है, तो उनको वो जुकाम हो गया, बुखार होने जैसा हो गया। इस प्रकार जब हम आत्माओं में गुण और शक्ति की कमी हो जाती है, तो यही परिस्थितियां तनाव करने वाली महसूस होती। और जब हम अंदर से पावरफुल है, तो यही परिस्थिति कॉमन तीन लगेगी, हम आसानी से पार कर सकेंगे। तो मैं आज के इस सत्र और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, वो ही बताने का मैंने प्रयास किया कि स्पिरिचुअली एम्पावर होना अपने अंदर में वो शांति, शक्ति और खुशी भरना, ताकि जीवन का बाह्य व्यवहार या व्यवसाय हम आराम से कर सके। जैसे कोई भी चीज को अच्छी तरह देखने के लिए हमारे पास दोनों प्रकार की रोशनी चाहिए, ये बाहर की लाइट भी चाहिए और इन आंखों की रोशनी भी चाहिए, तो ही हम इस चीज को अच्छी तरह देख सकते। इस प्रकार जीवन का यथार्थ दर्शन करने के लिए भी बाह्य जगत के ज्ञान के साथ साथ हमें अपने आंतरिक जगत का भी सही ज्ञान होना जरूरी। और इसलिए आज का मॉर्निंग फर्स्ट लेसन अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होने का, कि हमारा आंतरिक अविनाशी स्वरूप वो आत्मा स्वरूप है, चैतन्य शक्ति स्वरूप है, ये हमारा बाह्य स्वरूप है, शारीरिक स्वरूप। तो जैसे शरीर के लिए हम कहते हैं ना, हमारी तीन प्राथमिक आवश्यकताएं फिजिकल एग्जिस्टेंस के हिसाब से, एक तो हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए और खुराक चाहिए, जिसको ही लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। ये हमारी भौतिक बेसिक आवश्यकताएं। अब आप सोचिए, हमें हवा क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? अगर यहां स्वच्छ हवा ना हो तो हमें सफोकेशन महसूस होता है। हम कहेंगे भाई खिड़की दरवाजे खोल दो, स्वच्छ हवा आवे, तो हम अपने आप को रिलैक्स, तरोताजा महसूस करते। हमें पीने के लिए निर्मल जल चाहिए, समय पर अगर पानी पीने को नहीं मिलता है हम कितने परेशान हो जाए, उस समय कितनी भी अच्छे भोजन का थाल लेकर आवे तो भी हम क्या कहेंगे कि भाई पहले पानी दो फिर भोजन करो। योग्य खुराक न मिले तो शरीर कमजोर होता जाता है, पर हमें हवा क्यों चाहिए, पानी क्यों चाहिए, खुराक क्यों चाहिए, कौन बताएगा? हमें हवा, पानी, खुराक क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर उसी से बना है, हवा, पानी, खुराक से ही बना है। कहते हैं ना, शरीर में 60% पानी है, तो शरीर हवा, पानी, खुराक से बना है, इसलिए हमें हवा, पानी, खुराक चाहिए। इस प्रकार जीवन में हमें और भी क्या चाहिए? सिर्फ हवा, पानी, खुराक चाहिए या और भी कुछ चाहिए? क्या चाहिए? हमारी सिर्फ भौतिक आवश्यकताएं हैं या और भी कोई आवश्यकता है? क्या क्या चाहिए? हाँ, शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए। ये हमारी सूक्ष्म आंतरिक आध्यात्मिक आवश्यकता है। देखो, जीवन में शांति नहीं है, हर आए दिन कोई न कोई बात का कलह क्लेश है, तो टेंशन उत्पन्न होता है। जब सच्चा निस्वार्थ प्यार नहीं मिलता है, व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता। जीवन में सच्ची खुशी आनंद नहीं है तो जीवन नीरस शुष्क लगता है। ये हमारी आंतरिक आध्यात्मिक आवश्यकता है, क्योंकि ये शांति, सुख, आनंद, प्रेम कोई चीजें नहीं, ये हम पैसे से खरीद नहीं सकते कि भाई आप बाजार जा रहे हैं किलो शांति ले आना। ये हम बाजार से पैसे से खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये सूक्ष्म अनुभूतियां हैं, ये हमारी आत्मस्थिति है, आंतरिक गुण और शक्तियां हैं, वो हमें बाहर से नहीं प्राप्त हो सकती, वो हमें अपने अंदर से आत्म स्वरूप से ही जगाना होता है। अब आवश्यकता आंतरिक सूक्ष्म आध्यात्मिक है और हम उसको फिलफुल करना चाहते हैं भौतिक चीजों से, साधनों से, सुविधाओं से, तो वो कहां से हो? कहते हैं एक धनाढ्य ने अपने उसको एक ही बेटा था, बेटे के रहने, जीने, खाने पीने, घूमने फिरने, पढ़ने के लिए बहुत सुंदर उसने प्रबंध करके दिया। बेटे का अलग कमरा था, उसमें सब सुविधाएं, लेकिन फिर भी बच्चा खुश नहीं रहता। एक दिन उसने माँ बाप से कहा कि मैं इस घर में रहता हूं पर मुझे पता ही नहीं पापा कहाँ जा रहे हैं, मम्मी कहाँ जा रही है, मुझे कुछ मालूम ही नहीं। पिताजी ने उसको कहा कि ठीक है, कल से तुमको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगी और दूसरे दिन से बच्चे के दरवाजे पर वो शीट लगा दी जाती थी कि आज पापा इस बिजनेस टूर में जा रहे हैं, आज इस मीटिंग में जा रहे हैं, आज इस पार्टी में जा रहे हैं, मम्मा इस प्रोग्राम में जा रही हैं। बच्चे को सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगी लेकिन फिर भी बच्चा खुश नहीं था, क्योंकि वास्तव में बच्चे को क्या चाहिए था? हाँ, प्यार चाहिए। उसे माँ बाप का वॉर्म्थ चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। इसलिए सब साधन सुविधाओं के बावजूद भी वो खुश नहीं। अधिकतर काफी भाई बहने बॉम्बे से आए हैं। अभी ही एक मेहमान एक सुना रहा था युवा कि हम घर में सुबह सोए हुए होते हैं और पापा जॉब पर निकल जाते हैं, रात को देरी से आते हैं, उस समय भी हम सोए हुए होते। हफ्ते में एक ही बार पापा से मिलना होता है। हमने कहा कि पापा आप तो संडे पापा है, आप तो सिर्फ रविवार के पापा है, क्योंकि पहले जो फैमिली में आपस में केयरिंग शेयरिंग बैठ करके जो होता था वो टाइम नहीं। नौकरी धंधे से घर आकर भी जब से टीवी कल्चर आया है, घर आकर भी लोग टीवी के सामने बैठ जाते। बहने भी कहेगी जल्दी जल्दी खा लो, फलानी सीरियल आने वाली। पहले जो हम एक दूसरे शेयर करते, अंदर की फीलिंग्स वेंटिलेट कर पाते थे तो टेंशन कम हो जाता, पर आज वो रहा नहीं, इसलिए इंसान खुद ही भारी होता जा रहा। तो मैं पहले एक प्रश्न आपके सामने रखती हूं, आप आपस में तीन तीन इस पर शेयर करें लाइन में ही, क्योंकि कुर्सियां तो फिक्स है, तो तीन तीन का ग्रुप बन जाएं और शेयर करें उस पर कि मैं यहां क्यों हूं। सीधे शब्दों में कि मैं यहां क्यों आया हूं, क्या इस पर आप विचार विमर्श करें। हर एक जो भी आए हैं वो यहां क्यों हैं, क्यों आए, इस पर आपस में एक दूसरे शेयर करिए, बताइए कि आप यहां क्यों आए। पहले परिचय करो एक दूसरे, जिसको नहीं जानते हो उनसे बातचीत करो। एक दो को परिचय अपना बताओ, कहां से आए हैं और क्यों आए। वो भाई कहां गए, फिर हम तीन ग्रुप को बुलाएंगे कि उनका शेयरिंग क्या रहा। जिसकी बातचीत हो चुकी वो हाथ ऊपर करें। आइए आप तीनों आइए यहां, माइक देना, इधर है माइक, आगे नीचे रख दे। वाई हाँ जी, हाँ ऊपर सीख लिया अपने, आप वहीं रहे, माइक यहां से हाथ में देंगे। अपना नाम बताएं, शरीर का, और कहां से आए। इधर इधर वहां रखो ना,
चलो। मेरा नाम लक्ष्मीकांत विठलदास मोदी है, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से आया हूँ और मेरा चाय का होलसेल बिजनेस है।
हाँ। क्यों आए हैं?
यही कि हम लोग बिजनेसमैन तो है, बिजनेस करते हैं, सब करते हैं, बिजनेस करते समय आजकल क्या हो गया है, बिजनेस में बहुत परेशानी, गवर्नमेंट की परेशानी रहती है और व्यापारियों से भी बहुत तकलीफ होती है, कॉम्पिटिशन ज्यादा हो गया है, तो ये सब बिजनेस करते समय हम हमारे मन की शांति कैसे रख सके ये जानने के लिए आए हैं।
बहुत सच। नेक्स्ट।
ओम शांति। मेरा नाम शैला मोदी है, मैं बड़ौदा से आई हूँ। मैं एक बिजनेस भी करती हूँ और मेरा घर भी चलाती हूँ। घर और बिजनेस में मैं अपनी लाइफ खुद भूल गई हूँ कि हमको कैसे जीना है, क्या करना है। मैं उसकी जानकारी के लिए यहाँ पे आई हूँ। ओम शांति।
वेरी गुड।
ओम शांति। मैं अर्जुन सिंह पानीपत से आया हूँ। मेरा बिजनेस है दिल्ली में। हम लोग जो व्यापार करते हैं तो उसके अंदर हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि कंपटीशन के चलते कि हम लोग अपना निजी जीवन भी के लिए भी समय नहीं दे पाते हैं। तो उसका निजी जीवन में जीने की कला के कैसे समय निकालें, बिजनेस भी करें और घर परिवार को भी समय दें, समाज को भी दें, उसके लिए हम लोग यहाँ आए। ओम शांति।
बहुत गुड। ये टीम बरोबर है, अलग अलग स्थान की। और आइए, तीनों आइए, तीनों पार्टनर आइए। भाई इधर से निकल सकते हैं। आ जाइए।
मैं प्रमोद अग्रवाल बिहार से आया हूँ। वहाँ दो डिस्ट्रिक्ट में मेरा रेमंड का शोरूम है। मैं पहले अपने व्यापार में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहा कि मुझे लगता है कि शायद 40-38 वर्षों तक इतने ज़्यादा समय दिया कि बिल्कुल घर और परिवार को कुछ समय नहीं दे पाया, भूल गया। जिसका नतीजा हुआ कि घर परिवार में आज जब तालमेल बैठाने की कोशिश की जाती है तो नहीं बैठता है। लड़के समझते हैं कि पिताजी मुझे प्यार नहीं करते, और आज कितनी भी कोशिश की जाती है लेकिन लगता है कि वो दिन जो है लौट के नहीं आ सकता है, और वो बहुत बड़ी भूल थी। ज्ञान में तो चूंकि अभी 2 वर्षों से लगभग आया हूँ, 2.25 वर्षों से, और उस कैसे उसको मैं फिर से वापस पा सकता हूँ इसी की तलाश में इस बिजनेस विंग के प्रोग्राम में आया हूँ। ओम शांति।
बहुत अच्छे।
ओम शांति। मेरा नाम प्रमोद सिंघानिया है, बेतिया बिहार से आया हूँ। कपड़े का खुदरा व्यवसाय करता हूँ। बिजनेस में रहकर कैसे विदाउट टेंशन बिजनेस किया जा सकता है और एक परिवार में भी रहकर ये दोनों चीज़ को कैसे ठीक किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है और बिना टेंशन के दोनों काम हो सकता है, ये सीखने में आया हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। मैं देवकीनंदन क्याल बिहार बेतिया से आया हूँ। मैं एक कपड़े का उद्योग व्यापारी हूँ और मुझे यही समझ में आया कि यहाँ मतलब आने पर बिजनेस करने का के साथ साथ शांति और स्वभाव की भी जानकारी थोड़ी हो और उसको कैसे हम तालमेल बैठा करके सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से करें और घर परिवार को भी सुचारू रूप से चलाएं, इसी के लिए आया हूँ। ओम शांति।
बहुत अच्छा। ताली तो बजाइए भाई। बैठ यहाँ, बैठ। बहनों की टीम कोई नहीं है? आइए ये दोनों। अच्छा।
ओम शांति। मैं श्याम कुमार सैनी जयपुर राजस्थान से आया हूँ। मेरा व्यवसाय एक तो पेट्रोल पंप इवेंट एंड टेंट्स का है। मैंने ये देखा है कि व्यापार, दीदी ने सही कहा था कि वेल्थ ही वेल्थ कमाता है, हेल्थ और शांति नहीं कमा पाता। शांति के लिए सब कुछ दुनिया में चाहिए। सबसे बड़ा पीस में कभी इस संस्था में बहुत कम जाता था, पर मैंने देखा कि शांति मिलने की जगह यही है। तो ये बिजनेस क्लास मीट थी, तो शांति के लिए और एक जिंदगी की बैलेंस, कभी कभी बैलेंस नहीं हो पाता है, परिवार में भी नहीं हो पाता है, आपस में एक दूसरे में व्यवसाय में भी नहीं हो पाता है। तो जिंदगी में बैलेंस ये देखा कि यहाँ से बैलेंस का जो बिल्कुल जो तोल है वो यहाँ मिलेगा, तो तो मैं यहाँ आया और पीस के लिए, बैलेंस के लिए और परिवार की शांति।
ओम शांति। मैं कोई बिजनेस नहीं करती हूँ, मैं तो अपने युगल को लेके आई हूँ कि काश ये बाबा के बन जाए, क्योंकि मैं 25 सालों से हूँ और ये रेगुलर नहीं, मैं रेगुलर हूँ और बस सिर्फ मेरी यही है कामना कि ये बिल्कुल रेगुलर बन जाए, और मेरी कोई कामना नहीं है, एक ही कामना है मेरे दिल से। और आप सब भी मेरे लिए ये कहना कि ये मेरे दिल से है ना बाबा के जुड़ जाए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी, कोई बिजनेस नहीं है।
आइए बस लास्ट टीम आएगी, आपका साथी कौन है?
बाबा।
नहीं नहीं, बहुत अच्छा, ये तो आप बैठिए, आइए भाई। बहनों में से कोई नहीं आया, बहनों की टीम ने किया ना शेयरिंग। आइए बहनों की एक टीम आ जाए। हाँ भाई बोलिए आप।
ओम शांति। मेरा नाम राजेंद्र कुमार मानेक, राजू भाई कहते हैं मेरे को, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आया हूँ। मेरा व्यवसाय है टाइल्स का, होलसेल का बिजनेस है, रिटेल भी है, कोयले का भी है और ट्रांसपोर्टिंग भी है। मैं आज 38 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मगर ये लास्ट 3 सालों से मैं जब से जुड़ा हूँ तब से मेरे को कोई टेंशन नहीं है और अच्छे से व्यापार करता हूँ, और बल्कि गति बढ़ गई है मेरी काम करने की। धन्यवाद।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
ओम शांति। हम जेनरेशन गैप बहुत हो गया है आजकल, तो हमारे हस्बैंड और बेटे का बहुत झगड़ा होता है बिजनेस में, इनके शांति के लिए हम इधर आए हैं कि इनको कैसे हैंडल करना है, तो वो आके इधर ढूंढ रहे हैं। ओम शांति।
आपका नाम बताइए बहन जी, कहाँ से?
चंदा चावला फ्रॉम बॉम्बे।
बॉम्बे चंदा बहन, बहुत अच्छा।
भावना लालवानी, बॉम्बे। मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ, घर में इतनी व्यस्त रहती हूँ, बच्चे सब अच्छे हैं, बहू अच्छी है, सब अच्छा है, पर इतनी व्यस्त होने से ऐसा लगता है कि रोने को आता है कि ये मानव जन्म मेरा बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है, उसको पाने के लिए, ढूंढने के लिए मैं यहाँ आई हूँ।
बस बस।
ओम शांति। मैं बॉम्बे की रहने वाली ज्योति आहूजा, मैं चाहती हूँ कि भगवान को कैसे पाया जाए और बच्चों के साथ कैसे साथ में जुड़ के रहना चाहिए, उसका साधन ढूंढने के लिए मैं यहाँ आप सबका साथ लेने आई हूँ।
बस बस अब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो देखिए, बैठिए प्लीज, रख दीजिए। हम सभी, हर एक, काफी भाई बहनों से सुना हम सब ने कि हम सभी यहाँ कुछ जानने के लिए, समझने के लिए और सीखने के लिए आए। हम अपना विकास चाहते हैं, अपने में परिवर्तन चाहते हैं। हर एक महसूस करते हैं कि कोई लिमिट्स में हम बंध गए। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरे बोलने की रीति ऐसी है, मैं कैसा हूं ना, मेरे स्टाइल ही ऐसे, तो ये जैसे कि लिमिटेशंस में हम बंध गए। हम इन सीमाओं को ब्रेक करके अपना परिवर्तन करने, विकास करने के लिए आए हैं, खास एक प्रयोजन, कॉज को लेकर के आए हैं और अपने अनुभव का आदान प्रदान करने के लिए आए हैं। जैसे भाई ने बताया, आप इनका अनुभव सुन सकते हैं, 38 वर्षों से बिजनेस कर रहे हैं और कब से जुड़े हैं, 3 साल से इनका अनुभव है कि कैसे वो बिल्कुल रिलैक्स होके बिजनेस भी कर रहे हैं, कार्यक्षमता भी बढ़ी है और बिजनेस भी बढ़ा है। तो एक दो के अनुभव से हम लाभान्वित तो हो सकते हैं। अगर यही चीज हम बिजनेस में अपनाएं कि व्यापार में हम हमेशा सीखने की तत्परता रखें, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, व्यक्तियों के मन बदल रहे हैं, हमें नित्य नया नया सीखना होगा। अगर हम अपने दिल दिमाग के द्वार बंद कर देते हैं और समझ लेते हैं कि मैं तो बहुत अनुभवी हूं, मैं बरसों से ये बिजनेस करता, परंतु नहीं, हमें हमेशा जीवन में हर व्यक्ति परिस्थिति से सीखना होता है। वास्तव में ये सीखने की तत्परता रखना ये सफलता है। हमें जीवन में नवीनता लानी, अब नवीनता चीजों में ला रहे हैं, दुकान के सेटअप में, स्टोर के एनिमेशन में, आउटलुक में, उसमें नवीनता कर रहे हैं। पर यहां जो नवीनता की बात करती हूं वो स्वयं में करते हैं। हम अपने स्वभाव संस्कार में परिवर्तन करें ताकि हमारे ग्राहक, हमारे कर्मचारी हमसे महसूस करें कि अब सेठ बदल गए हैं, इनके नेचर में अच्छाई आ गई है, पहले बहुत गुस्सा करते थे अब नहीं करते। हमें स्वयं में नए नए गुण और शक्तियों को धारण करना है। तो व्यापार में सफलता वास्तव में इसको कहते हैं कि परिस्थितियां आती हैं, कभी प्राप्ति, कभी हानि, कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, कभी निष्फलता, पर इन बातों में अपने को सदा स्थिर रखना, बैलेंस में रखना, वास्तव में वो सफलता है। इसलिए ये क्वेश्चनर आपके सामने रखते हैं और इसको देखते हुए आप अपने आप को देखिए कि क्या आप सफल हैं। बिजनेस तो बढ़ा लेते, एक दुकान है, दो दुकान, चार दुकान कर लेंगे, एक शहर में स्टोर है, चेन स्टोर बना देंगे, 10 लाख का टर्नओवर है, 15 लाख का कर देंगे, नेशनल है, इंटरनेशनल ट्रेड बना देंगे, वो हो रहा है। लेकिन सफल हम हैं, ये सब कुछ करने के बाद हमने अपने जीवन में क्या पाया? तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्या आप आसानी से थक जाते हैं? मैंने इजीली, बहुत जल्दी हम थक जाते, कोई इतना भारी प्रोजेक्ट भी नहीं होता है, रोज के छोटे छोटे कार्यों में ही व्यक्ति थक जाता है। क्यों? जब अंदर में उमंग उत्साह नहीं है, रोज की वही रूटीन लाइफ है, तो थोड़ा सा कार्य करने में भी इंसान थक जाता है। दूसरी बात, क्या छोटी छोटी बातों पर आप दूसरों से परेशान व नाराज हो जाते हैं? बच्चे ने कुछ बोल दिया, तोड़ दिया, ठीक से कोई चीज भोजन की नहीं बनी, या हमारे कर्मचारी ने कोई बात नहीं समझी, बहुत छोटी छोटी बातों में दूसरों से परेशान हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। आप डायरी में टिक करते जाइए, यस और नो। तीसरी बात, क्या आप स्वयं को परिस्थितियों का सामना करने में असहाय महसूस करते हैं? अब मैं नहीं कर सकता, अब बहुत हो गया, इस प्रकार से जैसे अपने को कम हम महसूस करते हैं कि हमें और भी कोई सहारा या मदद चाहिए। बहुत झेला जीवन में, अब ताकत नहीं। चौथी बात, जिन बातों के विषय में कुछ किया नहीं जा सकता, क्या आप उनके बारे में अधिक सोचते हैं? है ना, कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, पर हम उनके बारे में सोचते ही रहते। भाई जो चीज हम नहीं कर पाते हैं, हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, उसके लिए ज्यादा सोचने से क्या फायदा। पांचवी बात, क्या आपको लगता है कि आपको सामान्य से अधिक आराम की आवश्यकता, क्योंकि मन से और तन से थक जाते, तो ज्यादा आराम चाहिए। एक तो स्लीप की क्वालिटी भी ठीक नहीं होती, साउंड स्लीप नहीं कर पाते हैं क्योंकि मन शांत नहीं है, घंटों सोने के बाद भी रिफ्रेश नहीं होते। क्या दूसरों की समस्याओं को शालीनता से, रॉयलिटी से सुनना आपको मुश्किल लगता है? कई बार हम सुनना ही नहीं चाहते, बच्चे कुछ कह रहे हैं, बहनें कुछ कह रही हैं, हमारे छोटे कर्मचारी कुछ कह रहे हैं, हमारे में वो लिसनिंग एबिलिटी ही नहीं। वो कुछ बोले उससे पहले ही कट कर देते, हमारे में जैसे उनकी कोई बात सुनना हम चाहते नहीं या हमारे में शक्ति नहीं। समस्याओं का समाधान ढूंढने में क्या आपको उलझन होती है? मुंझते रहे, अंदर अंदर कंफ्यूज होते रहे, क्योंकि हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं है जीवन की और जगत की। यहां जो मॉर्निंग के चार लेसन आप करेंगे चार दिन में, वो सारी बेसिक नॉलेज है। इससे सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो फिर कोई भी बात में डिसीजन लेना सहज हो जाता है, क्योंकि यहां इतनी क्लैरिटी है। व्यक्ति अंदर अंदर मूंझता रहेगा, भारी होता रहेगा, क्योंकि निर्णय नहीं ले पाते। क्या छोटी छोटी बातों में आपका समय व्यर्थ जाता है? जहां कम समय देना चाहिए वहां घंटों बिताएंगे, दो शब्द से काम करना चाहिए 10 शब्द बोलेंगे, एक बार सोचने की बात वहां 10 बार वही सोचते रहेंगे, एनर्जी टाइम वेस्ट होता रहता। क्या आपको दूसरों के साथ तालमेल बिठाना असंभव मुश्किल लगता है? जैसे भाई इनके साथ मैं नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं, ऐसे हम कर देते। एक दो के स्वभाव संस्कार से तालमेल हार्मनी बिठाना मुश्किल लगता है। क्या आपको आमतौर पर सिरदर्द की शिकायत रहती है? अब ये सब बातें देखते हुए आप अपने आप को मार्क्स दीजिए, क्या आप सफल हैं? सफल हैं? नहीं। बेशक आपका बिजनेस बढ़ा है, आपकी इनकम बढ़ी है, आपका स्टेटस बढ़ा है, पर जीवन सफलता के हिसाब से और वास्तव में जिसके लिए कहते हैं ना भाई खुशी मौज के लिए आनंद के लिए सुख से खाएं, उसके लिए कमाते हैं और वो सुख का अनुभव करने का समय ही नहीं। अपने आप में सफल नहीं तो अभाविक है कि हमें व्यापार में भी सफल अनुभव करना मुश्किल महसूस होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण अगर गहराई से आप सोचेंगे तो ये बात समझ में आएगी। जीवन में, संसार में दो चीज है, एक है पदार्थ, वस्तुएं, साधन, चीजें, मैटर जिसे हम कहते हैं, और दूसरा है एनर्जी। जितने साधनों का हम उपयोग करते हैं उसके पीछे हमारी एनर्जी खर्च होती है। आज से 100 वर्ष पूर्व के मानव जीवन को याद करें, हमारे ही बुजुर्गों को हम याद करें, 80-90 साल के जो बैठे हैं अभी भी हमारे बीच में, कम साधनों में, कुदरत की गोद में बहुत नैसर्गिक जीवन वो जीते। जीवन में शांति, आपस में प्रेम, संतुष्टता। आज जितने साधन बढ़े हैं उतनी एनर्जी खर्च होती। आपके पास टेलीफोन है, मोबाइल है, उसका उपयोग करने के लिए कौन सी शक्ति खर्च होगी? वाणी की शक्ति। शब्द संपत्ति खर्च होती। आप बोलेंगे तो उपयोग होगा ना। अब आप देखिए, जब से ये मोबाइल निकले हैं हमारा बातचीत करना कितना बढ़ गया। जितना बोलना ज्यादा आंतरिक शक्ति खर्च तो होती है। एक है बेनिफिशियल बोलना, खुद में और दूसरों में शक्ति भरता है। प्रशंसा के दो बोल, शुभ वचन, सही बात बताना दूसरे में और खुद में शक्ति भरता है। आज हमारी जो बातचीत हो रही है टेलीफोन मोबाइल के माध्यम से, वो जरूरी कितनी है और व्यर्थ कितनी। आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, देखते होंगे, हाँ बस हम यहां तक पहुंच गए, आज क्या खाया, आज क्या पिया, माना छोटी छोटी सामान्य बात, क्योंकि साधन है। आज इंसान कुछ भी काम नहीं है तो भी शांति से नहीं बैठ सकता, कोई काम नहीं तो भी मोबाइल के नंबर दबाता रहेगा, कुछ ना कुछ खोलता बंद करता रहे, क्योंकि हम शांति से बैठ नहीं पाते। जो आज सुबह आपने सीखा ना, स्वचिंतन, स्वदर्शन, सेल्फ को रियलाइज करना, वो जीवन में अभ्यास ही देगी। हमारे चिंतन में कौन होते हैं आप देखो, सारा दिन जो आप सोचते हैं मन में कौन होते? दूसरे, चीजें, परिस्थितियां, लोग, समाज, स्वयं हम हैं। स्व के लिए कितना हम सोचते, क्योंकि अपने आप को जानते ही नहीं है ना, खुद को ही भूले हैं को सोचेंगे क्या? मैं भाई को बुलाती हूँ, आगे आइए भैया, कोई भी आइए, एक यहाँ आगे माइक। इस हॉल में कल से आप आ रहे हैं, कल शाम को आए थे ना फंक्शन, आज सुबह भी आए, योग शिविर में भी आए, अभी भी आए, हॉल अच्छी तरह देखा है?
हाँ देखा है, देखा है।
अब आप आंख बंद करके बताइए, इस हॉल में अभी क्या क्या है? आंख बंद करके
ये तो खुली से भी नहीं बताया जा रहा।
हाँ क्या है?
आँख खुली भी की हो तो सभी,
आँख खुली नहीं रखना है बस। हाँ जल्दी जल्दी बोलिए क्या क्या है?
चेयर है, आदमी बैठे हुए हैं,
कुर्सियां हैं,
हाँ,
और
जो बाबा का फोटो है,
फोटो है बाबा का, और क्या क्या है जल्दी जल्दी?
घड़ी है, क्लॉक है,
घड़ियां लगी हुई है। आंख बंद करके बता रहा
ना, ये है, आंख खुली से भी तो पूरा नहीं बताया जा रहा ना।
अच्छा और कौन आएगा?
हाँ जी,
आइए, ये भाई आ रहा है, कोई बात नहीं बैठ जाइए। आंख बंद करके बताइए इस हॉल में अभी
ओम शांति।
हाँ
यहाँ मैंने देखा है, यहाँ पे बहुत सारे चेयर हैं, सामने बाबा का फोटो है,
हाँ,
और शिव बाबा का फोटो है, घड़ियां हैं, बॉक्स है, कैमरा है, और बहुत सारे लोग हैं उसमें, बहुत सारी कुर्सियां खाली भी है।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आंख खोल दीजिए। हाँ देखो भाई ने सब बताया, बहुत सारे कैमरे हैं, माइक है, स्टेज है, कुर्सियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर मैं खुद हूँ। देखो अपने आप को हम भूल गए, लोग हैं पर मैं हूँ। हम अपने आप को ही भूल गए, इसलिए स्व के लिए हमारा चिंतन ही नहीं, तो कहाँ शक्ति स्वयं को मिली। अब गाड़ी है आपके पास, छोटे मोटे, पहले तो लोग चल के जाते थे, फिर साइकिल आई, आज कितने साधन है, घर में हरेक के अपने अपने साधन है। उसके पीछे कौन सी शक्ति लगती? कार पड़ी है पर पहले मन में संकल्प आता है कि चलो गाड़ी लेकर बैंक में जाके आता हूँ, मार्केट जाके आता हूँ, फलाने के घर जाके आता हूँ, पहले संकल्प शक्ति खर्च होती है, तब हम गाड़ी को फिर यूज करते हैं, भोजन करते हैं, उससे जीवन शक्ति बनती है, पर आज किस प्रकार का भोजन हम कर रहे हैं जिससे शरीर बनता नहीं बिगड़ रहा है, कितने डिसीज लग रहे, मशीन है पर ऑपरेट करेंगे, क्रियान्वित करेंगे, कर्म शक्ति उसके पीछे खर्च होती, धन है पर समय कितना खर्च कर, समय भी एक संपत्ति, वो कितना हम खर्च कर रहे हैं तब जाके धन कमा रहे हैं। तो हर जितने भी पदार्थ हैं उसके पीछे हमारी शक्तियां खर्च होती, चीजें बढ़ रही, स्वाभाविक है, हमारी आंतरिक शक्तियां खर्च हो रही है। आवश्यक है कि जैसे साधन बढ़ाते हैं, हम अपनी आंतरिक शक्तियों को भी बढ़ाएं। अब ये विचार शक्ति है, वाणी की शक्ति है, कर्म शक्ति है, समय शक्ति है। आप इसका हिसाब लगाइए कि वो वेस्ट कितनी हो रही है, जमा कितनी हो रही है। विचार सोचना सफल कितना है और वेस्ट कितना है। जो बोलते हैं उसमें भी जरूरी कितना और अनावश्यक कितना हम बोल बोल। कर्म जो कर रहे हैं वो बेनिफिशियल कर रहे हैं या किस प्रकार के कर्मों में हम दिन रात लगे हुए है? तो अधिकतर हम यही पाएंगे, आप अपने ये चारों ही खजाने देखो, धन और साधन का हिसाब आप लगाते, वो वेस्ट ना हो, ज्यादा से ज्यादा जमा हो, उसका ध्यान आप रखते। रोज उसका पोता मेल निकालते हैं ना व्यापारी लोग, तो धन और साधन का हिसाब निकालते। पर ये जो कुदरती खजाने मिले हैं हरेक को, विचार संपत्ति, शब्द संपत्ति, कर्म संपत्ति और समय, टाइम इज मनी कहते हैं ना, बल्कि मोर धैन मनी कहते। गया हुआ धन वापस आ सकता है पर बिता हुआ समय वापस नहीं आ सकता, तो मोर धैन मनी। ये सारे खजाने वेस्ट कितने हो रहे, जमा कितने हो रहे, तो अंदर का हिसाब तो उधार का बन रहा है। कहते हैं आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, वो वाला हिसाब हो रहा है। इसलिए परिस्थितियां शांति से ना ऑब्जर्व कर पाते हैं, न शांति से डिसीजन परखते हैं, न पार कर पाते, क्योंकि अंदर का वेस्टेज ज्यादा। धन साधन का बैलेंस साफ करते हैं। देखो आप में से कोई भी व्यापारी ऐसा है जिसका बैंक में खाता ना हो? हाँ, माना हरेक का बैंक बैलेंस है ना, हरेक बैंक बैलेंस रखते हैं। अच्छा, कोई भी ऐसा व्यापारी होगा जो जमा से निकालता ही रहे और डिपॉजिट ना करे? नहीं। हाँ, जितना निकाले उससे ज्यादा जमा करने का लक्ष्य रखते हैं कि एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस मेरे पास होना चाहिए। क्यों हम अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाते हैं? हाँ, ताकि समय पर अचानक कोई खर्च आ जाए, नुकसान हो जाए, आवश्यकता पड़ जाए, तो हम उस परिस्थिति को पार कर सके, घबराएं नहीं, चिंतित नहीं होंगे अगर अच्छा बैंक बैलेंस। पर परिस्थितियों को फेस करने में क्या केवल धन और साधन ही चाहिए या और भी शक्तियां चाहिए? है ना, शांति चाहिए मन में, घबराहट ना हो, चिंता ना हो, अधीर्यता ना हो, अंदर में शांति, प्रेम, सब शक्ति चाहिए ना। उसके बैलेंस का तो हम सोचते ही नहीं है। इसलिए यहां हम आंतरिक शक्तियों के बैलेंस की विधि बताते हैं कि जब सेल्फ को, स्वयं को हमें एम्पावर करना है, खुद में बैलेंस लाना है, तो चित्र में बताया है कि जिसमें बैलेंस की कला है वो एक रस्सी पर चल रहा है, पर कितना खुशी और सहज, जबकि वो एक बहुत बड़ी चीज है, हर कोई नहीं चल पाता है, पर आउट ऑफ बैलेंस होने के कारण इतना डेंजरस चीज भी वो एक आराम से कर पाता है। अगर हम ये मेथड अपनाएं कि स्वयं को सेल्फ रिस्पेक्ट में स्थित करें, जो यहां आज सुबह आपको आत्मचिंतन की विधि बताई कि मैं आत्मा शांत हूं, शुद्ध, मैं आत्मा सत्य हूं, जब हम स्वयं को स्वयं की श्रेष्ठता में स्थित करते हैं और ये अभ्यास बार बार हम करते हैं, तो कैसी भी परिस्थितियां आएंगी हम डामाडोल नहीं हो जाएंगे, हमारे में शांति स्थिरता रहे। और जो चीज मुश्किल है वो बड़ी खुशी और आसानी से एक कला के रूप में हम कर सके। ये स्वमान में स्थित होना, सेल्फ रिस्पेक्ट, आज सेल्फ रिस्पेक्ट या तो अभिमान में बदल गया है या डिप्रेशन में चेंज हो गया है। मैं कुछ नहीं हूं, डिप्रेशन, मैं ही सब कुछ हूं, ईगो। आज ये दो सिचुएशन जीवन की जो हो गई है उसका कारण ही ये है कि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में, जो हमारी अपनी ओरिजिनलिटी है, वास्तविकता है, उसमें हम स्थित नहीं। और आज सुबह आपने फर्स्ट लेसन में ये समझ लिया है कि हमारी ओरिजिनल नेचर ही शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज है। अगर वो मुझे बार बार स्मृति में रहे और मैं उनका स्वरूप बन के रहूंगी तो हमें परिस्थिति महसूस ही नहीं होगी। चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे या कोई भी मुसीबत आ जाए, हम बहुत स्वस्थता और शांति से उस बात को पार कर सकते। तो ये है हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन, हम यहां समाप्त करते हैं और कुछ मिनटों का ब्रेक होगा, फिर आपका नेक्स्ट सेशन शुरू होगा। हम 3 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। शांति में बैठकर क्या करना है, स्वनिरीक्षण, कुछ थॉट्स मैं दूंगी, आप मन में रिवाइज करें। मेरा बाह्य जीवन, मेरी आंतरिक स्थिति का ही प्रतिबिंब है। बाह्य जीवन को मुझे व्यवस्थित करना है, तो मुझे अपनी आंतरिक आत्मस्थिति को शक्तिशाली स्वस्थ बनाना। एक पेड़ को हरा भरा रखने के लिए मुझे एक एक पत्ते को पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं, उनकी जड़ों को सींचने की आवश्यकता। मेरे जीवन वृक्ष का बीज मैं स्वयं आत्मा जब मैं स्वयं को शुभ विचारों से सींचती हूँ, जब मैं स्वयं में शांति सुख आनंद भरती हूँ, तो जीवन की हर प्रवृत्ति कार्य संबंध में स्वतः सुखानंद शांति महसूस होती। मैं स्वयं शांत मैं आत्मा शांत स्वरूप मेरा स्वधर्म शांति मुझे स्वयं में स्थित होने की आवश्यकता। मैं शुद्ध हूँ, सत्य हूँ, चैतन्य आनंद स्वरूप।